भारत में वामपंथी आंदोलन आगे। 1928 से 34 तक भारतीय समाजवादी दल ने अत्यधिक वामपंथी रुख अपनाया और गांधी और नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं पर प्रहार किए और कांग्रेस को भारत में पूंजीपति वर्ग की संस्था जो कि परिश्रमी वर्ग के आधारभूत हितों के विरुद्ध कार्य करने वाली संस्था की संज्ञा दी। भारतीय समाजवादी दल ने दिसंबर 1940 में अपने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें कहा गया व्यक्तिगत आतंकवाद से वीजा प्राप्त नहीं होगा अपितु जब तक श्रमिकों के अधिकाधिक परिश्रमी वर्ग कृषक नगरों के निर्धन लोग और भारतीय सैनिक अपनी समाजवादी दल के झंडे तले एकत्रित होकर सतत विरोध नहीं करेंगे तथा सफलता नहीं मिलेगी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1927-29 में औद्योगिक संधि कारण कपड़ा तथा पटसन उद्योग तथा रेलवे में भारी हड़तालें हुए। सरकार ने श्रमिक नेताओं को पकड़ लिया। 1929-33 तक सुप्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र मुकदमा चलता रहा। इससे सीमित रूप से भारतीय समाजवादी दल को प्रोत्साहन मिला। पकड़े जाने वाले और मुकदमा चलाए जाने वाले नेताओं में अखिल भारतीय कांग्रेस के समिति के सदस्य ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों और कृषकों ने भिन्न भिन्न दलों के पदाधिकारियों की वामपंथी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और कुछ अन्य समाजवादी नेता सम्मिलित थे। इस मुकदमे के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया गया जो कांग्रेस कार्य समिति ने बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनाथ काटजू और अभ्यास अंसारी जैसे सुप्रसिद्ध वकील थे। मुकदमे के कुछ समाजवादी नेताओं के भाषणों से जो राजनीतिक तत्वों से परिपूर्ण थे समाजवादियों विचारधारा को प्राप्त करने में सफलता मिली। 1931 में श्री एम एन राय ने इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समवाय दल कलकत्ता नगर के बाहर लगभग है ही नहीं और वहां भी मुख्यतः विद्यार्थी इसके सदस्य हैं और यह दल विद्यार्थी दल के रूप में विद्यमान है। ओवर स्ट्रीट था बिंडर मिलर का अनुमान है कि 1933 में भारतीय समवाय दल की संख्या केवल 20 ही रह गई थी दल की सदस्य संख्या। इन लेखों के अनुसार इस समय समवाय दल की सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध सामूहिक आंदोलन से अलग बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध तथा भारतीय समाजवादी दल की भूमिका। जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भारतीय समाजवादी कॉमिंटर्न के आदेश अनुसार फांसीवाद तथा नाजीवाद समेत सभी समाजवादियों के विरुद्ध अपना लोकप्रिय मोर्चा बनाए रखा। यही नहीं समाजवादी कांग्रेसियों से इस बात से बाजी ले गई कि उनकी नीति स्पष्ट थी जबकि कांग्रेस की नीति अंग्रेजों के प्रति अस्पष्ट और डबाडोल थी। 15 सितंबर 1939 तक कांग्रेस दल ने युद्ध को साम्राज्यवादी घोषित कर दिया। अब साम्यवादी दल ने गांधी जी को एक प्रगतिवादी भूमिका निभाने का श्रेय दिया। दल ने अपनी श्रम नीति को कांग्रेस समितियों को समर्थन देने का अनुरूप बनाया। उसने यह भी घोषणा की कि साम्यवादी तर व्यापार संघ युद्ध प्रिय नीति अपनाते हैं और विभाजक नीति के दोषी हैं। जून 41 में भारतीय समाजवादी दल की स्थिति पूर्णतया भ्रमोत्पादक हो गई क्योंकि हिटलर ने समाजवाद की पितृभूमि रूस पर आक्रमण कर दिया था। दल की केंद्रीय समिति ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका शीर्षक था भारत मित्र शक्तियों के लिए। उसमें उन्होंने मित्र शक्तियों के लोकतांत्रिक समाजवाद को जर्मनी के फासिस्ट समाजवाद के विरुद्ध समर्थन देने की बात कही। अब इस दल ने युद्ध को जनता का युद्ध अथवा लोकयुद्ध की संज्ञा दी और उसी मित्र शक्तियों के युद्ध प्रयत्न को पूर्ण समर्थन देने का विश्वास दिलाया। भारत छोड़ो आंदोलन और साम्यवादी आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया और अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ने को कहा। कांग्रेस का धार्मिक सिद्धांत था राष्ट्रवाद के प्रति भक्ति चाहे देश ठीक हो या गलत। इसके विरुद्ध भारतीय समाजवादी दल का नारा था अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के प्रति भक्ति मेरे देश की स्वतंत्रता मिले अथवा न मिले। इसी प्रकार यह दल नीति निर्देशन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी पदाधिकारियों से प्राप्त करता था। भारतीय समाजवादी दल अमरीका का समर्थन करता था और राष्ट्रवाद था कांग्रेस का विरोधी हो गया। इसने कांग्रेस कार्यक्रम के विकल्प के रूप में दूसरा कार्यक्रम सुझा दिया जो निम्न थे। पहला भिन्न भिन्न दलों को फासिज्म के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। दूसरा रूसी मित्र शक्तियों को युद्ध प्रयत्न में पूर्ण समर्थन देना चाहिए। तीसरा भारत सरकार के विरुद्ध विरोधी नीतियों यानी कांग्रेसी नीतियों का डटकर विरोध करना चाहिए। समवादी दल का मानना था कि असहयोग से भारत को सफलता स्वतंत्रता नहीं मिलेगी इससे आंतरिक कलह अराजकता और गतिहीनता बढ़ेगी और इसमें भारत में फासिस्ट दलों को विजय मिलेगी। नामुरी पाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में समवादी दल की भूमिका की सफाई में कहा था भारतीय स्वतंत्रता संसार में फासिस्ट संघर्ष के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें सोवियत रूस तथा उसकी मित्र शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। 1980 में लिखते हुए उन्होंने कहा यह तर्क सत्य निकला। 1942 के विद्रोह में समाजवादी दल की भूमिका साम्राज्यवाद को समर्थन देने और राष्ट्रवाद का विरोध करने की थी। जुलाई 1942 में भारत सरकार ने पहले ही सभी समाजवादी नेताओं को छोड़ दिया था तथा समाजवादी दल पर से प्रतिबंध हटा लिया। इसके विपरीत अगस्त में कांग्रेसी नेता बंदी बना लिए गए थे और कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी। समाजवादी दल ने जो भी सवाल सफाई करे परंतु भारतीय समाजवादी दल ने 1942 के विद्रोह में घुसपैठिए का काम किया और विद्रोह को हानि पहुंचाई। इस दल ने कांग्रेस लिंग मतभेद को भी बढ़ावा दिया था सभी अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया। 1942 में समाजवादी दल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार भारत एक बहुराष्ट्रवादी राज्य था और इसमें 16 विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। उत्तर युद्धकालीन संवैधानिक बातचीत तथा साम्यवादी दल 1942-45 तक साम्यवादियों ने थोड़ा बहुत जो प्रभाव श्रमिक विद्यार्थियों और कृषकों में स्थापित किया वह चिरस्थायी नहीं हुआ। युद्ध के उपरांत कांग्रेस और लीग लोकप्रिय बन गए और शक्ति हस्तांतरण के समझौते में आ गए। आए साम्यवादी दल अविश्वसनीय हो गए और राजनीति में कोई स्थान नहीं मिला। उसके प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1946 के आम चुनाव में साम्यवादी दल को एक भी स्थान नहीं मिला। यह स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता की संध्या पर यह दल विश्वास खो बैठा था देश के मुख्य